महाकाल का शंख बज गया, समय बदलने वाला है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वानप्रस्थ सत्र शांतिकुंज हरिद्वार दिनांक 27 मई 77।
वक्त बदल रहा है।
देवियों भाइयों,
प्रातःकाल सुनहरे रंग का सूर्य निकलता है तो उस समय सब में उमंगें और नया उत्साह देखा जा सकता है। पक्षी चहचहाते हुए पेड़ों पर देखे जा सकते हैं और हर आदमी की नींद खुलने लगती है। बच्चे उठने लगते हैं और सब आदमी अपने काम पर लग जाते हैं। प्रातःकाल होते ही हरेक के भीतर उमंग और हरेक के भीतर हलचल प्रारंभ हो जाती है।
मित्रों,
प्रातःकाल के युग का अब नया सबेरा आरंभ होने जा रहा है।
मित्रों,
मालूम पड़ता है कि रात्रि अब समाप्त होने को आ गई और नया दिनमान शुरू होने वाला है। नया दिन अब हमारे नजदीक आ गया है। हम और आप जिन दिनों में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, वह प्रातःकाल का समय है। प्रातःकाल की स्वर्णिम उषा का चिन्ह पीला वस्त्र हमने आपके शरीरों पर पहना दिया है। आप इस मिशन के संदेशवाहक हैं, जो इस बात की घोषणा करती है कि अब नया युग चला आ रहा है। अब समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, वक्त बदल रहा है,
मनुष्य बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। मित्रों,
जिन परिस्थितियों में और जिस ढंग से हम बहुत दिनों से चले आ रहे थे, अब उन परिस्थितियों में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब हमको नई परिस्थितियों में निवास करना पड़ेगा। विज्ञान ने जिस हिसाब से तरक्की की है, उस हिसाब से दुनिया बहुत नजदीक आ गई है। थोड़े घंटों में अमेरिका से पाताल लोक से लेकर के हम यहाँ आना चाहते हैं और 24 घंटे के भीतर आ जाते हैं। टेलीफोन से अभी बात करना चाहें तो इंग्लैंड और अमेरिका से हम कुछ मिनट के भीतर अभी बात कर सकते हैं।
क्या पहले बात हो सकती थी?
नहीं हो सकती थी, लेकिन अब दुनिया को विज्ञान ने बहुत नजदीक ला करके रख दिया है। अब हमारे लिए नए ढंग से विचार करना आवश्यक हो गया है। पुराने ढंग से विचार करके अब हम जिंदा नहीं रह सकते। हमको अब नई परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा और समय से ढलना पड़ेगा।
प्रातःकाल का संदेश देता आपका बाना।
साथियों, जो ढलना है, जो बदलना है, उसकी तैयारी के लिए हम अग्रदूत की तरीके से आगे आगे काम करते हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है और बड़ा महत्व है। आगे चलने वाले का भी उसी तरह से स्वागत होता है जिस तरह से प्रातःकाल के निकलने वाले नवीन सूर्य का सब जगह स्वागत होता है। हम भी आपको सवेरे सविता देवता का ध्यान कराते हैं।
दोपहर का ध्यान हम नहीं कराते, सायंकाल के सूरज का भी ध्यान नहीं कराते।
सूरज तो वही है, लेकिन उसकी नवीनता प्रातःकाल की है, क्योंकि वह नया संदेश लेकर के आता है। जब सब और अंधेरा छाया हुआ होता है, तब थोड़े समय में एक नई परिस्थितियां पैदा करके सूरज चला आता है। हम और आप यही प्रातःकालीन सूर्य का, प्रातःकालीन संदेश का और प्रातःकालीन युग का संदेश लेकर पीले कपड़े पहनकर लोगों के पास चल रहे हैं।
वासंती चोला। मित्रों,
पीले कपड़े वसंत के कपड़े हैं। वसंत से क्या मतलब है? बेटे, वसंत से मेरा मतलब उस समय से है जिसके अंदर उमंगें, पत्तियों के अंदर उमंगें, वृक्षों के अंदर उमंगें, घास के अंदर उमंगें दिखाई पड़ती हैं। ठंड के दिनों में जो डंठल के रूप में पड़े थे, वसंत के समय के फूलों के रूप में, नई नई कोपलों के रूप में, नई नई पत्तियों के रूप में बाहर आ जाती है। हर जगह हमको मालूम पड़ता है कि कुछ नयापन आ गया है, कुछ नवीनता आ गई है। वसंत जो आता है तो केवल फूल लेकर नहीं आता, एक उत्साह लेकर आता है, एक उल्लास लेकर आता है।
यह बसंती चोला हमने आपको पहना दिया।
यह वह बसंती चोला है जिसको भगत सिंह जेलखाने के अंदर गाया करते थे कि हे माँ,
हमारे चोले को बसंती रंग में रंग दो।
यह उस रंग की बात नहीं थी जो एक पैसे दो पैसे का रंग मंगा कर रंग सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दो पैसे का पीला रंग ले लें और गुलाबी रंग का मत लें।
चोले से मतलब यह था कि हमारा जीवन और हमारा व्यक्तित्व इस तरीके से रंग जाए कि इसमें बसंतीपन हो, अर्थात उमंगे, उत्साह, उल्लास और नई चेतना, नई प्रेरणा के आदर्श जुड़े हों।
बसंती से मतलब यही है।
नया मनुष्य आने का द्योतकला रंग। मित्रों,
हमने आपको बसंती चोला इसलिए पहनाया कि आपको यह ध्यान बना रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या करने का उद्देश्य आपके कंधे पर इस कपड़े के रंग के हिसाब से लाद दिया गया है। बेटे, यह किसका रंग है?
यह प्रातःकालीन सूरज का रंग है।
प्रातःकालीन सूरज ऐसे ही होता है जैसा कपड़ा आप पहने हुए हैं।
गुरुजी,
प्रातःकालीन सूरज से आपका क्या मतलब है? बेटे, प्रातःकालीन सूरज से हमारा मतलब यह है कि प्रातःकालीन सूरज जिस तरीके से एक नई उमंगें, नई हलचलें, नई दिशाएं और नई रोशनी ले करके घोर अंधकार के बीच में उदय होता है। हम चाहते हैं कि आप लोग नवीनता का संदेश लेकर के इस तरीके से जाएं कि नया युग चला आ रहा है।
नया समय आ रहा है, नई परिस्थितियां आ रही हैं, नया मनुष्य बनने को जा रहा है। क्यों?
इसलिए बेटे कि मनुष्य नया बनने के लिए जा रहा है, अब मौत और जिंदगी के बीच में से उसे एक का चुनाव करना पड़ेगा। बड़ा प्रतिकूल समय है। अब जिन परिस्थितियों में मनुष्य रह रहा है और जिस रास्ते पर चल रहा है, उस पर मौत के अलावा दूसरी चीज हमको दिखाई नहीं पड़ती। कैसे दिखाई नहीं पड़ती? तीन चार वजह हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हम मौत की ओर जा रहे हैं और सामूहिक आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं।
कैसे?
बेटे, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हथियार अब बन रहे हैं, वहाँ जा करके आप देखिए तो पाएंगे कि ऐसे हथियार बन रहे हैं जो लाठी नहीं है, बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, तमंचे नहीं है, वरन ऐसे हथियार हैं जिन्हें एक आदमी जाकर छोड़ सकता है और जो हजारों मील दूर जा करके विनाश कर सकते हैं। आज आदमी एक रॉकेट छोड़ सकता है, बम, हाइड्रोजन बम छोड़ सकता है और ऐसी गैस छोड़ सकता है कि सारे के सारे इलाके के आदमियों का सफाया हो जाए,
पता ही नहीं चले, हत्याकांड भी न हो, मारकाट भी न हो, सब जहां के तहां सोते हुए रह जाएं।
ऐसे हथियार और बम हैं।
मालूम पड़ता है कि कोई पागल आदमी किसी दिन उन हथियारों पर हावी हो गया और उसने चला दिए, तो यह जरा सी पृथ्वी, नन्ही सी पृथ्वी, छोटी सी बच्ची सी पृथ्वी को एक दैत्य एटम बम खत्म कर देगा।
हमको मालूम पड़ता है कि अगर ऐसा कहीं हुआ तो मनुष्य जाति लाखों वर्षों के लिए, करोड़ों वर्षों के लिए फिर वहीं चली जाएगी जहां से कि अमीबा पैदा हुआ था और जहां से पानी में से चीजें पैदा हुई थीं।
फिर शायद हम नई सभ्यता पैदा करेंगे।
ऐसे समय में हम और आप रह रहे हैं,
पत्थर के मकान, पत्थर के आदमी, मित्रों।
हम और आप ऐसे वक्त में रह रहे हैं जिसमें कि इंसान का स्वार्थ बेहिसाब रूप से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आदमी समझदार तो बहुत होता जा रहा है, अकलमंद भी होता चला जा रहा है, पर आदमी पत्थर का बनता जा रहा है, निष्ठुर बनता जा रहा है।
आज हमको हर जगह निष्ठुर आदमी दिखाई पड़ता है, पत्थर दिल दिखाई पड़ता है। पहले गांव में कच्चे मकान बनते थे, फूस के झोपड़े बनते थे, अब फूस के झोपड़े नहीं बनते,
अब हर जगह पत्थर के मकान बनते हैं, ईंटों के मकान बनते हैं।
आज पक्के मकान, मजबूत मकान सब जगह दिखाई पड़ते हैं।
शहरों में भी कच्चे मकान नहीं दिखाई पड़ते और गांव में भी नहीं दिखाई पड़ते।
बेटे, अब हमको मालूम पड़ता है कि अब मनुष्य पत्थर के मनुष्य, चट्टान के मनुष्य, लोहे के मनुष्य हैं।
नहीं साहब, हाड़ घटाव मांस के हैं। हाँ बेटे, हैं तो हाड़ घटाव मांस के, पर मैं तेरे हृदय को कहता हूँ और तेरे कलेजे को कहता हूँ, जिसमें न किसी के लिए दया है, न कोई सिद्धांत है, जिसके पास न आदर्श है, न कोई बड़ी बातें हैं सिवाय पैसे के और औलाद के, काम वासना और तृष्णा के अलावा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है।
ऐसा घिनौना लक्ष्य कि जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा होती है।
भजन करने वाले क्षेत्रों में भी हम देखते हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी हम देखते हैं। हर जगह हम देखते हैं कि जो आदमी अपने आप को दूसरों से अच्छा और ऊंचा बताते हैं, उनको भी हम देखते हैं। राष्ट्रीयता की दुहाई देने वालों को भी देखते हैं और सामाजिकता की दुहाई देने वालों को भी देखते हैं और उन्हें देखकर हम शर्मिंदा होते हैं।
एक खौफनाक जानवर आदमी, मित्रों।
अध्यात्म के नाम पर हम लोहे के आदमी हैं और पत्थर के आदमी हैं और चट्टान के आदमी हैं। आदमी अगर चट्टानों के बनते चले गए तो उनके भीतर से मोहब्बत चली जाएगी और मोहब्बत चले जाने के बाद में सहकारिता चली जाएगी और स्नेह चला जाएगा। स्नेह और सहकारिता चली जाएगी तो इसके बाद में ईमानदारी चली जाएगी और भलमनसाहत चली जाएगी।
फिर क्या हो जाएगा?
आदमी के बराबर खौफनाक जानवर दुनिया के पर्दे पर कोई नहीं होगा। शेर मारकाट में तो बहुत ताकतवर होता है, पर बेअक्ल होता है और बेवकूफ होता है। हाथी भी ताकतवर बहुत होता है, पर वह भी बेअक्ल होता है। लेकिन आदमी इतना समझदार है कि इसको किसी के पेट में मुंह खंगाल करके खून पीने की जरूरत नहीं है। किसी के पेट में बिना दांत गड़ाए ही वह दूसरों का खून पी सकता है और आदमी को मुर्दा बना करके छोड़ सकता है।
यह कला मनुष्य को आती है। आदमी से अरे डर रहा आदमी, मित्रों। आदमी बड़ा खौफनाक है और आदमी बड़ा खतरनाक है।
खतरनाक और खौफनाक आदमी जिस तेजी से बढ़ रहा है, आदमी के दांत और सींग जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि अब ये राक्षस होने वाला है।
इसके अंदर से दया, करुणा, ममता, स्नेह, दुलार और आदर्शवाद के सारे सिद्धांत खत्म होते चले जा रहे हैं।
अगर तरक्की इसी हिसाब से होती चली गई तो आप देखना थोड़े दिनों में वह भूत पलीत हो जाएगा, जिनमशान हो जाएगा, जिससे कि एक दूसरे को डर मालूम पड़ेगा।
आदमी को देखकर आदमी डरेगा और कहेगा कि देखो आदमी जा रहा है, होशियार रहना। पहले आदमी को देखकर हिम्मत बंधती थी कि आदमी आ गया,
वह हमारी सहायता कर सकता है और हम एक से दो हो गए, लेकिन बेटे, अब हमको भय मालूम पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ साथ जो व्यक्ति चलता है वही हमारे लिए पिशाच न सिद्ध हो। रेलगाड़ी के डिब्बे में हम बैठते हैं और पास में दूसरा आदमी बैठा हुआ रहता है। बार बार हम देखते हैं कि कहीं यह जेबकर तो नहीं है। बार बार पूछते हैं कि भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। बार बार हम देखते रहते हैं कि कहीं यह हमारे गले की जंजीर न ले जाए और हमारी जेब न काट ले। कैसी है यह प्रगति
साथियों?
आदमी से आज हमको डर लगता है।
यदि यह तरक्की इसी हिसाब से होती रही, इसी हिसाब से सिद्धांत विहीन आदमी, आदर्श विहीन आदमी अगर बढ़ता रहा, इसकी समझदारी बढ़ती रही, शिक्षा बढ़ती रही, यह इसी तरह में करता रहा तो आदमी आदमी को खा जाएगा, फिर एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा।
इन आदमियों की वजह से आज सब जगह नरक बनेंगे। जहां कहीं जिस घर में ऐसे आदमी रहेंगे, उस घर को नरक बना करके छोड़ेंगे। जिस मोहल्ले में रहेंगे, जिस गांव में रहेंगे, जिस नगर में रहेंगे, जिस देश में रहेंगे, उसका सफाया करके रहेंगे। बेटे, अब ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हों तो मालूम पड़ता है कि दुनिया अब मरने के लिए जा रही है। आदमी की जो तरक्की हो रही है, उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि इससे तो हमारा पिछड़ापन लाख दर्जे अच्छा था।
यह तरक्की मुझे बड़ी खौफनाक मालूम पड़ती है।
उसे देखकर मालूम पड़ता है कि हम किसी भयानक युग की दिशा में चले जा रहे हैं।
आसन विभीषिकाएं।
बेटे, एक और भी बात हमको मालूम पड़ती है जिससे लगता है कि हम किसी भयानक जमाने की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। वह क्या चीज है? वह है बेटे, संतानों की संख्या। संतानों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, गुणन प्रक्रिया के हिसाब से, रिकरिंग प्रक्रिया के हिसाब से, चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से बढ़ रही है। अगर वह इसी हिसाब से बढ़ती रही तो मुझे दिखाई पड़ता है कि अभी तो स्कूलों में जगह नहीं मिलती, नौकरी के लिए जगह नहीं मिलती, रेलगाड़ियों में जगह नहीं मिलती, अमुक स्थान में जगह नहीं मिलती, तो 100 वर्षों के अंदर आगे चलकर सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खुराक की तो मैं क्या कहूँ, आदमी को भूख से तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। जिस हिसाब से आज आदमी औलाद पैदा करते चले जा रहे हैं, आदमियों की यह आदत इतनी भयंकर है कि आप देख लेना इसके क्या परिणाम होते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि हम किसी भयंकर समय की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
संभलेगा अवश्य आदमी, परंतु गुरुजी, क्या यह भयंकर समय आएगा?
नहीं बेटे, मेरा विश्वास है कि नहीं आएगा, क्योंकि आदमी बड़ा समझदार है,
आदमी बड़ा अक्लमंद है।
यह बढ़ता तो है, पर ठोकर खाने के बाद में संभल जाता है, समझ जाता है, उसे अकल जरूर आती है।
कितने ही युग आ चुके जब ठंडक पड़ी, बर्फ से दुनिया जम गई,
लेकिन आदमी इतना होशियार है कि उससे भी मुकाबला कर लेता है और संभल जाता है।
मैं आपको बताता हूँ कि खौफनाक परिस्थितियाँ कैसी आ रही हैं,
खतरे कैसे आ रहे हैं, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आदमी के भीतर जो सुपीरियरिटी है, आदमी के भीतर जो महत्ता है, वह समय के अनुसार समझ जाती है। वह बढ़ता तो है मरने के लिए, चलता तो है आग के पास जाने के लिए, लेकिन जब उंगलियां जलने लगती हैं, हाथ झुलसने लगता है, तो वह पूरे हाथ को जलने से पहले ही उसे पीछे खींच लेता है। हम देखते हैं कि गलती से जब बच्चा आग के पास चला जाता है और जरा सी उसकी अंगुली जलने लगती है तो वह पीछे भाग खड़ा होता है।
सामान की नहीं गरिमा की जरूरत। मित्रों,
आदमी समझदार है और इस समझदारी पर मुझे विश्वास है,
इसलिए मैं जानता हूँ कि नया युग आएगा। वर्तमान परिस्थितियों का विकल्प यही हो सकता है कि हम मानवीय गरिमा और मानवीय सिद्धांतों को फिर से ठीक करें।
सामान की कमी नहीं है, सामान की कमी को अगर पूरा भी किया तो मैं समझता हूँ कि इससे आदमी की किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। आप सामान की कमी को कहाँ तक पूरा करेंगे?
अमेरिका से ज्यादा तो नहीं कर सकते, जहाँ प्रत्येक आदमी के लिए प्रतिदिन की औसत आमदनी 2000 मासिक है।
2000 रुपये मासिक कैसे है? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 5 आदमी रहते हैं, आप रहते हैं, आपकी बीबी रहती है, 3 बच्चे रहते हैं,
इस तरह आप 5 हुए तो औसत आमदनी क्या होनी चाहिए? आपकी आमदनी 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए।
फिर आपकी 2000 की औसत आमदनी फेल हो सकती है। इतने बड़े आमदनी वाले देश में आप जाकर देखिए और पता लगाकर आइए, उन किताबों को पढ़िए जिनमें अमेरिका की रिपोर्ट छपती है,
तो आप पाएंगे कि वहाँ का समाज कितना दयनीय, कितना गया बीता समाज, कितना पिछड़ा हुआ समाज, कितना हाहाकार करता हुआ समाज, कितना मरणोन्मुख समाज और कितना पतनोन्मुख समाज दिखाई पड़ेगा।
समाधान यह नहीं
गुरुजी।
तो क्या धन से हमारी समस्याएं सुलझ जाएंगी? बेटे, धन से समस्याएं नहीं दूर हो सकती, विज्ञान से भी नहीं हो सकती, पैसे से भी नहीं हो सकती। जब आदमी की जीवात्मा ही मरती चली जाएगी तो पैसा क्या करेगा? आदमी पैसा नहीं है, आदमी हड्डियां नहीं है और मांस भी नहीं है। आदमी के भीतर एक सोल काम करती है, चेतना काम करती है। चेतना की खुराक, चेतना की राहत और चेतना का नियंत्रण न मिल सकता तो बाहर की वस्तुएं क्या करेगी? हम रोज देखते हैं, पैसे वालों को देखते हैं, विद्वानों को देखते हैं, धनवानों को देखते हैं, मालदारों को देखते हैं, सेहत वालों को देखते हैं, ताकत वालों को देखते हैं, पहलवानों को देखते हैं और उनकी घिनौनी जिंदगी को देखते हैं। उनके सामने चारों ओर जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, उसे देखकर हम भाग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमको ऐसा धनवान मत बनाना, हमको ऐसा बलवान मत बनाना, हमको मत बनाना ऐसा विद्वान। बेटे, हमको इस विद्या से डर लगता है। हम चाहते हैं कि इस तरक्की की बनिस्बत हमारा पिछड़ापन ही हमारे पल्ले से बंधा रह जाए तो अच्छा है।
प्रेम त्याग से भरा होगा सतयुग। बेटे, मैं देखता हूँ कि नया युग आएगा, तो कैसा युग आएगा? यह ऐसा युग आएगा जिसमें आदमी के पास नीति, आदर्श, दर्शन, सिद्धांत, भलमनसाहत, ये सिद्धांत उसके पास होंगे
और थोड़ा सामान होते हुए भी आदमी अपना गुजारा कर लेगा। ऐसा युग आएगा जब आदमी संयम से रहना सीखेगा और इसी शरीर में से अपनी मजबूती पैदा कर लेगा, दिली जीवन पैदा कर लेगा। ऐसा जमाना आएगा जिसमें हम अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हंसती हंसाती हुई जिंदगी व्यतीत करेंगे। बच्चे अपने पापा से लिप्त जाया करेंगे और पाप अपने बच्चों को कंधे पर रख करके यह अनुभव करेंगे कि यह भगवान का बेटा है, भगवान का दिया हुआ छोटा सा खिलौना है। अपने पति को देख करके पत्नी खुश हो जाया करेगी। जिस तरीके से सूरज को देख करके कमल खिल जाता है, उसी तरीके से स्त्रियां अपने पतियों को देख करके खिला करेंगी और पति अपनी पत्नी को देख करके कहेंगे कि साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में विद्यमान है, हमारे घर में सरस्वती विद्यमान है,
हमारे घर में गायत्री विद्यमान है, फिर क्या कमी है?
बेटे, हम ऐसे ही प्रेम मोहब्बत की दुनिया को आता हुआ देखते हैं और उसके लिए तैयारी करने में हमको कोई निराशा नहीं होती,
क्योंकि मालूम पड़ता है कि भगवान उस जमाने को लाएंगे।
रात के बाद जब दिन आ सकता है, तो खराब और गंदे जमाने के बाद अच्छा समय क्यों नहीं आएगा?
यह तर्क, यह दलील हमको कहती है, भविष्य की आशाएं हमको कहती हैं, प्रकृति का चक्र हमको बताता है,
हर चिन्ह बताता है कि नया युग और नया जमाना आ रहा है और पुराना बदलने जा रहा है।
अग्रगामी बनिए। तो महाराज जी, फिर क्या करना चाहिए?
बेटे, आपके हाथ में एक सौभाग्य है, आप चाहें तो सौभाग्य का फायदा उठा सकते हैं।
कैसे?
आगे वाली लाइन में जो लोग चला करते हैं, यह श्रेय उन्हीं के हिस्से में आता है।
भीड़ में अगर आप कभी शामिल हों और अगर फोटो खींचे, तो सबसे पहले आपका ही फोटो खींचेगा। इसलिए पीछे चलने की बनिस्बत जहां आपको यह मालूम पड़ता हो कि यहां कुछ नफे का काम है और कोई अच्छा काम है, तो आपको आगे आगे चलना चाहिए।
कांग्रेस के आंदोलन में शुरू शुरू में जो लोग गए थे, उन्हें मजा आ गया और वे क्या से क्या बन गए। पीछे तो बहुत सारे आदमी आ गए और बहुत से चलते गए, लेकिन जिनके नाम आते हैं, वे हैं जो कि पहले गए थे।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह में जितने लोग गए थे, उनकी कुल तादाद 79 थी। वे लोग गांधी जी के साथ नमक बनाने गए थे। महादेव भाई देसाई भी थे, प्यारेलाल जी भी थे और दूसरे तीसरे आदमी थे।
मन में आया, काश
हम भी उन लोगों में शामिल होते तो हमारा भी फोटो खींच जाता और हमारी भी फिल्म बन जाती,
लेकिन हम आगे की लाइन में नहीं रह सके। बेटे, आगे की लाइन में, अच्छे कामों की लाइन में जो आदमी आगे चलते हैं, उनका बहुत नाम होता है। सभी में अकेला एक अंगद।
मित्रों,
अंगद आगे की लाइन में यह बताने के लिए थे कि देखो, राम रावण युद्ध होने वाला है और अब कुछ नया हेर फेर होने वाला है। अंगद लंका गए थे और रावण की सभा में पैर जमाकर खड़े हो गए थे। बेटे, अंगद का नाम रामायण में लिखा हुआ है। अंगद का नाम सुन करके हम बहुत गुस्सा आता है, क्यों साहब?
अंगद अकेले तो नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। हाँ बेटे, बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक का नाम नल था, एक का नील था, एक का नाम सुग्रीव था, एक नाम क्या, बहुत सारे ढेरों आदमी थे, बंदर थे, भालू थे।
तो फिर अंगद की बात क्यों कहते हैं? अंगद की बात बेटे मैं इसलिए करता हूँ कि वह सबसे आगे वाली लाइन में खड़े थे।
जब राम रावण युद्ध होने वाला था, तो अंगद पहली वाली भूमिका में आगे जा करके खड़े हो गए थे और उन्होंने अगली वाली भूमिका का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया था।
अच्छा समय यही है।
मित्रों,
अब ठीक उसी तरह का समय आ गया है। आप चाहें तो सवेरे निकलने वाले सूरज की तरीके से श्रेय ले लें।
नया युग तो आएगा ही,
आप काम न करें तो भी बेटे आएगा,
जरूर आएगा। आप इस बात को नोट करके रखना कि अब नया समय अवश्य आएगा।
अगर नया समय नहीं आएगा तो मनुष्य जाति की सामूहिक हत्या हो जाएगी और आत्महत्या करके मनुष्य जाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
गुरुजी, ऐसा हो जाएगा?
नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी मैंने आशा का दीपक जला करके रखा है। खराब से खराब परिस्थितियों में भी मैं यह उम्मीद करता रहता हूँ कि कल नहीं तो परसों अच्छा समय आने ही वाला है।
बेटे, अच्छा समय जरूर आएगा।
मैं अपने विश्वास के आधार पर, आशाओं के आधार पर, मानव जाति की गरिमा के आधार पर और जिस भगवान ने ऐसी सुंदर दुनिया बनाई है और ऐसा सुंदर आदमी बनाया है, उसकी बात पर विश्वास करते हुए मैं ख्याल करता हूँ कि अच्छा दिन आने वाला है और जल्दी ही आने वाला है।
आप चाहे जो भूमिका ले लें।
मित्रों, ठीक यही समय है जबकि नए युग की, नए समय की शुरुआत चल रही है और नया समय बदल रहा है।
आप चाहें तो अपनी मुनासिब भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं।
आप चाहें तो पीछे भी चले जा सकते हैं। आप चाहें तो बैठे भी रह सकते हैं। आप न करेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप न करेंगे तो भगवान की हवाएं ऐसे तेजी के साथ आएंगी कि आप ना उड़ना चाहें तो भी पत्ते उड़ेंगे और दूसरी चीजें उड़ेंगी। भगवान की जब इच्छा होती है तो कोई ना कोई काम कहीं ना कहीं से हो ही जाता है।
अगर नए युग को आगे लाने वाला मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सबेरा नहीं होगा?
मुर्गा बोलता है तो अच्छा मालूम पड़ता है कि अच्छा साहब।
मुर्गा बोल गया, अब तो उठें। हाँ साहब, उठिए, अब तो मुर्गे ने आवाज लगा दी। मुर्गा ना हो तो भी बेटे, सबेरा तो होगा ही।
मैं चाहता था कि आपका नाम लोगों की जबान पर हो कि सबेरे के लिए, मुर्गा बोला, कुकड़ूकू की। आप भी बोलिए ना कुकड़ूकू, तो मजा आ जाए और आप भी खुश हो जाएं और हर आदमी के दिमाग में आ जाए कि सबसे पहले उठने वाला कौन है,
सबको आवाज लगाने वाला कौन है,
सबसे पहले शंख बजाने वाला कौन है, सबसे बड़ा पंडित कौन है,
सबसे बड़ा मुल्ला कौन है। मुर्गा,
आप चाहें तो मुर्गा हो सकते हैं,
मात्र दिलेरी चाहिए। तो महाराज जी,
मुर्गा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटे, एक काम करना पड़ेगा और वह है दिलेरी। दिलेरी के अलावा और किसी भी बात की जरूरत नहीं है आपको। ज्ञान की जरूरत है।
नहीं बेटे, ज्ञान की कोई खास जरूरत नहीं है। दुनिया में ज्ञान वालों ने बड़े काम नहीं किए हैं, दिलेर लोगों ने बड़े काम किए हैं। फ्रांस की स्वाधीनता की जिम्मेदारी वहां के पढ़े लिखे लोगों के जिम्मे नहीं थी, वहां के वकीलों के जिम्मे नहीं थी, PhD लोगों के हाथ में नहीं थी और पंडितों के जिम्मे नहीं थी और आचार्यों के जिम्मे नहीं थी।
किसके जिम्मे थी? किसान की एक छोकरी के जिम्मे थी। 17-18 वर्ष की छोकरी थी जिसका नाम था जोन ऑफ ऑक। जोन ऑफ ऑक घोड़े पर चढ़ करके चल पड़ी।
उसने कहा कि अंग्रेजों से मैं लड़ूंगी। बस अंग्रेजों से लड़ने के लिए वह लड़की, जो नाम मात्र की पड़ी थी, चल पड़ी।
और जब चल पड़ी तो आगे आगे वह चली और उसके पीछे पीछे सारा फ्रांस चल पड़ा।
उसने अंग्रेजों को हरा दिया और फ्रांस फिर से आजाद हो गया, मछली की तरह धारा को चीरते हुए।
मित्रों,
आप आगे आगे चलें, तो आगे चलने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है?
हथियारों की?
नहीं बेटे, हथियारों की कोई खास जरूरत नहीं है।
पैसे की?
पैसे की जरूरत नहीं है।
विद्या की?
विद्या की भी जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक चीज की जरूरत है और उसका नाम है दिलेरी। दिलेरी माने हिम्मत।
हिम्मत की जरूरत है।
हिम्मत किसे कहते हैं?
हिम्मत से मेरा मतलब उस दिलेरी से नहीं है जो डाकुओं में पाई जाती है, लुटेरों में पाई जाती है, ठगों में पाई जाती है। उनमें भी बड़ी दिलेरी होती है, पर मेरा मतलब उससे नहीं है।
मेरा मतलब उससे है जो समय की धारा को चीरते हुए, वातावरण को चीरते हुए उल्टी दिशा में चल सकते हो।
उसको मैं दिलेरी कहता हूँ। दिलेरी का एक उदाहरण है मछली।
पानी जब बहता है, नदी में बहाव आता है, तब पानी के साथ सब बह जाते हैं। छप्पर बह जाते हैं, कांटे बह जाते हैं, लकड़ियां बह जाती हैं, हाथी बह जाते हैं, घोड़े बह जाते हैं, गाय भैंस बह जाती हैं, सब बह जाते हैं। पर एक जानवर ऐसा है जो पानी के बहाव को चैलेंज करता है और यह कहता है कि हम आपके साथ साथ चलने को कतई तैयार नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। और उस जानवर का नाम है मछली। मछली पानी की बीच धारा में छलछलाती हुई उल्टी दिशा में चल पड़ती है।
पहले कोई आगे तो चले।
मित्रों, लहरें लाख मना करती हैं कि हम नहीं चलने देंगे, लेकिन दिलेरी के सामने आप क्या कर सकते हैं? हम चलेंगे और उल्टी दिशा में चलेंगे। सारे लोग सीधी दिशा में चलते हैं, लेकिन जो लोग धारा को चीरते हुए उल्टी दिशा की ओर चलते हैं, उनको मैं दिलेर कहता हूँ। बस इसी दिलेरी की आपको जरूरत है। आप ऐसी हिम्मत को अपने भीतर संभाल कर रखे रहें जो समय को बदल डालने के लिए आवश्यक है।
महाराज जी, फिर समय से मुकाबला किससे करना पड़ेगा?
बेटे, एक हवा चल रही है, एक प्रवाह चल रहा है, लोगों की एक मनोवृत्ति चल रही है, आदमी का एक धर्रा चल रहा है।
इस धर्रे को बदलने और नया धर्रा लाने के लिए तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, किसी न किसी को तो आगे चलना ही पड़ेगा।
बाद में पीछे तो लोग चलेंगे ही, यही तो लोगों की आदत है कि पहले कोई आगे चले तो हम पीछे चलें।
बेटे, आगे आपको चलना पड़ेगा।
अगर आपको आगे चलने की दिलेरी है, हिम्मत है और आपके भीतर इतना मादा है कि हम जमाने की हवा और जमाने के धर्रे का मुकाबला करते हुए नए ढंग से विचार कर सकते हैं और नई परिस्थितियों को बुला लाने के लिए हिम्मत कर सकते हैं और अकेले आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि वह उद्देश्य पूरा हो गया जिसके लिए शिविर लगाया गया था।
दिलेरी का परिचय दें। साथियों,
हमने वानप्रस्थों के लिए शिविर लगाया था और जहां दूसरे आदमी तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, हमने आपको पीले कपड़े पहनाए थे। क्यों पहनाए थे? यूं पहनाए थे कि दूसरा कोई आदमी पीले कपड़ा नहीं पहनता।
आप बाजार में घूम आइए, आपको नीले पैंट पहनने वाले मिलेंगे, अमुक रंग के मिलेंगे, पर पीले रंग का कोई नहीं मिलेगा।
पीले रंग में आपको शर्म लगेगी। नहीं साहब,
हमको कोई शर्म नहीं लगेगी। देखो यह आया पीले कपड़े वाला, यह आया बाबाजी, यह आया भिखारी।
देखो यह आया पंडित, यह आया जोगी, यह आया ढोंगी, आदि बातें लोगों को कहने दीजिए। पीले कपड़े पहनने से आपने हिम्मत तो नहीं हारी, लोग यह कहते हैं। लोगों को कहने दीजिए, उनकी जबान है, वो भी चाहे कह सकते हैं। लेकिन गुरु जी ने हमको पीला कपड़ा पहनाया है, तो हमको पीले कपड़े में अपनी इज्जत मालूम पड़ती है और शान मालूम पड़ती है। नहीं साहब,
ये भिखारी हैं और भीख मांगते हैं। हाँ मांगते होंगे, जा, तेरे घर मांगने आए तो मत देना।
बेटे, जिसके भीतर दिलेरी है, वह सारी दुनिया की हंसी को देख करके भी अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है।
मैं उसको दिलेर कहता हूँ।
इस आदमी से मैं कुछ उम्मीद कर सकता हूँ?
मुझे नया आदमी चाहिए। मित्रों,
नया जमाना लाने के लिए, नई फिजाएं पैदा करने के लिए शायद ऐसे आदमी काम आ जाएं। जो आदमी धर्रे पर बह रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो नया धर्रा पैदा करना है, नया वक्त लाना है, नई जिंदगी पैदा करनी है, नया आदमी पैदा करना है और नए स्वभाव और नए संस्कारों से आदमी को ढालना है।
इसलिए मुझे नया आदमी चाहिए और ऐसा आदमी चाहिए जो हवा से प्रभावित ना हो, धर्रे के बहाव को चीरने के लिए जिसके अंदर कुव्वत और जिसके अंदर कलेजा हो। मुझे सिर्फ ऐसे आदमी चाहिए, दूसरे आदमी नहीं चाहिए।
मुझे खुशी है कि आप लोग ऐसे ही आदमियों में से हैं जिन्होंने यह निश्चय किया कि हम अपना मनोबल संग्रह करेंगे। बेटे, मनोबल संग्रह करेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? मनोबल का इस्तेमाल करने के लिए कई रास्ते हैं। यह कौन सा हथियार है? आपने इसके साथ साथ जो पीले कपड़े पहना है और मैंने जिसके लिए उम्मीद रखी है और जिस काम की आपको दीक्षा दी, जिस मनोबल की आपको मैंने दीक्षा दी, यह वह मनोबल है जो श्रेष्ठ कामों के लिए, आदर्श क्रियाकलापों के लिए प्रेरणा देता है। ऐसे व्यक्ति लोगों की कोई चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहते हैं,
मात्र भगवान की सलाह लें।
बेटे, लोग बड़े गंदे हैं, बड़े वाहियात हैं। इनकी सलाह, इनका मशविरा, इनके परामर्श से हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है।
ये चोरी के अलावा, चालाकी के अलावा, बदमाशी के अलावा, बेवकूफी के अलावा कोई सलाह नहीं दे सकते।
इनके पास भलमनसाहत की सलाह कहाँ है?
अरे, एक आदमी पकड़कर मेरे पास लाइए जो आपको भलमनसाहत और शराफत की सलाह देने के लिए तैयार हो।
जब बेटे शराफत की सलाह देने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
ऐसी स्थिति में आपको हिम्मत के साथ भगवान की सलाह और अपनी आत्मा की सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसको हम वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। वानप्रस्थ जीवन का उद्देश्य यही है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा?
बेटे, एक एक करके कदम बढ़ाता चल। कैसे? ऐसे कदम बढ़ाता चल जिसमें कि तेरी हिम्मत सिद्धांतों के प्रति निष्ठा का सबूत देती हो। अपना बंटवारा करो। महाराज जी,
क्या क्या काम करूं? बेटे, पहला काम तो यह कर कि एक बंटवारा कर दे।
किसका बंटवारा करूं?
इस चीज का बंटवारा कर दे कि तेरी दुकान में दो आदमियों का हिस्सा है।
अभी तो एक आदमी एक पार्टनर 99% माल खाता रहता है और दूसरे पार्टनर को अंगूठा दिखा देता है,
उसे कुछ भी नहीं देता है। तू तो पहला इंसाफ यही कर कि दोनों को बराबर की हिस्सेदारी दे। दुनिया में सब जगह बेइंसाफी हो रही है।
तू सबसे पहले इस बेइंसाफी को पहली बार अपने पास से दूर कर। यदि यह बेइंसाफी दूर हो जाए तो इंसाफ चालू हो जाएगा।
इंसाफ की दुनिया ही तो हमको लानी है, न्याय की दुनिया ही तो लानी है, भलमनसाहत की तो दुनिया ही लाती है। इसलिए निजी जीवन में जो बेईमानी हो रही है, इसको तू पहले ठीक कर दे।
पहले तू यहाँ से चल, फिर और बताऊंगा। काय सत्ता और जीवात्मा। मित्रों,
क्या करना चाहिए? यह करना चाहिए कि अपनी दुकान में हम दो आदमी हैं, लाला चुन्नूलाल, लाला मुन्नूलाल एंड सन्स। कौन सी है हमारी दुकान? यह शरीर ही हमारी दुकान है। इसमें दो आदमी काम करते हैं। इसमें दो आदमियों का हिस्सा है, एक हमारा शरीर और एक हमारी जीवात्मा। दो की सम्मिलित दुकान है। बेटे, हम शरीर से काम करते हैं, यह भी हमारा एक पार्टनर है जो दिन रात काम करता है, और एक हमारी जीवात्मा है जिसकी वजह से यह पार्टनर जिंदा है, जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ काम करती है। हम दो आदमी हैं। दोनों आदमियों की मशक्कत से, दोनों आदमियों की मेहनत से, दोनों आदमियों के सहयोग से हमारे जिंदगी की नाव चलती है। लेकिन एक आदमी इसका फायदा उठाता है और दूसरा आदमी दिन रात मरता रहता है। ना किसी को यह फिक्र है कि यह मर गया या जिंदा है। ना कोई इसको पानी पिलाता है, ना कोई इसको रोटी खिलाता है। सूख सूख कर यह कांटा हो गया है और मरने के नजदीक आ गया है।
जबकि एक आदमी मोटा होता जाता है।
इस गिरोह से बचें। बेटे, यह क्या हो रहा है?
बेइंसाफी तेरे भीतर हो रही है। कैसे?
जिंदगी का जो कुछ भी फायदा है हमारा बहिरंग उठाता है। बहिरंग से क्या मतलब है? बहिरंग से मतलब हमारे शरीर से है। सारा फायदा हमारा शरीर उठाता है और जीवात्मा बिलकती रहती है। जो भी वक्त होता है वह सारे का सारा हमारे शरीर के लिए होता है, हमारे खाने के लिए, हमारे ऐयाशी के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारे मौज मजा के लिए, और हमारे शरीर के साथ जो आदमी इस रस्सी से बंधे हुए हैं, शरीर की वजह से बंधे हैं, आत्मा की वजह से नहीं बंधे हैं। हमको कामवासना की हवस होती है तो हम बीबी पैदा कर लेते हैं और बीबी बच्चे पैदा कर देती है, इसलिए वे सब हमारे शरीर से ताल्लुक रखते हैं। वे हमारे शरीर के रिश्तेदार हैं, वे हमारी आत्मा के रिश्तेदार नहीं हैं। हमारे चारों ओर रिश्तेदारों का गिरोह जमा हो गया है। यह जो गिरोह है हमारी जिंदगी की सारी कमाई के ऊपर हाथ साफ करता रहता है। कोई एहसान नहीं कर रहे भजन करके। बेटे, आत्मा के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं साहब, हम दो माला रोज जप करते हैं। बेटे, मैंने 100 बार कहा है, फिर 100 बार अभी और कहूंगा कि जो आप भजन करते हैं वह दांत साफ करने के बराबर है और बालों में कंघी करने के बराबर है। भगवान पर कोई एहसान नहीं है।
भगवान ने मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं दिया कि हमारे लिए भजन करना।
भजन कोई चीज नहीं है। बेटे, भजन तो अपने मन की मलिनता की सफाई के लिए है।
इसके द्वारा हमारी जीवात्मा को कोई पोषण नहीं मिलता।
अगर पोषण मिला होता तो वे जो संत बाबाजी गंगाजी के किनारे, जमुना जी के किनारे बैठे रहते हैं, और पंडित लोग जो भीख मांगते रहते हैं, सारे दिन रामायण का पाठ करते रहते हैं, इनके अंदर आपको कोई तेज दिखाई पड़ता है,
इनके अंदर कोई वर्चस्व आपको दिखाई पड़ता है, इनके अंदर कोई गौरव दिखाई पड़ता है,
इनके अंदर कोई जीवन दिखाई पड़ता है,
इनके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, श्रेष्ठ कामों का सुख। मित्रों,
राम के नाम की बात मैं नहीं कहता, मैं तो यह कहता हूँ कि हमारे आत्मा की खुराक, जिसको हम शांति कहते हैं, सुख कहते हैं, जिसको हम संतोष कहते हैं, कहाँ है? सुख वह होता है जो हमारे शरीर को मिलता है। शरीर सुख उठाता है। जब जीभ से मीठी चीजें खाते हैं तो हमको सुख मिलता है। कामवासना के सेवन में हमें सुख मिलता है, और सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो हमें सुख मिलता है।
सुख किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। बस शरीर को मौज मिलती रहती है,
हमारी वासना पूरी होती रहती है, तृष्णा पूरी होती रहती है, लेकिन हमको शांति और संतोष नहीं मिलता है।
शांति और संतोष कैसे मिलता है?
बेटे, संतोष भजन से नहीं मिलता है, श्रेष्ठ काम करने से मिलता है, आदर्शों को जीवन में ढालने से मिलता है, ऐसे काम करने से मिलता है जिसमें हमारी जिंदगी दूसरे के सामने नमूने की जिंदगी बन सके, इससे हमें संतोष मिलता है,
उससे हमारा गर्व पूरा होता है, गौरव मिलता है,
उससे हमारी जीवात्मा गौरव अनुभव करती है कि सारे के सारे लोग जहां गंदी, घटिया और निकम्मी जिंदगी जी रहे थे, तब हमने मुसीबतों के बीच भी, कठिनाइयों के बीच भी एक ऐसी जिंदगी जी जो प्रकाश स्तंभ का काम करती रही,
प्रकाश स्तंभ बने।
प्रकाश स्तंभ जो अकेला समुद्र में खड़ा रहता है लेकिन वहां से लाइट फेंकता रहता है ताकि समुद्र में जाने वाली नावें और जहाज डूबने न पाएं। वह इशारा करता रहता है कि यहां मत आइए, चट्टान है,
यहां से दूर चलिए।
समुद्र में खड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस रात भर हमको बताता रहता है। आदमी का यह गर्व और आदमी का यह गौरव है और आदमी की यह शान है, इज्जत है कि बाकी लोगों ने जहां सब लोगों ने जहां अपने ईमान गंवा दिए, लोगों ने जब अपने सिद्धांत गंवा दिए,
तब हमने गरीबी में रहते हुए भी, दुखियारे होते हुए भी, कंगाली का मुकाबला करते हुए भी हमने ऐसी नेक और शराफत की जिंदगी जी, जिसको देख करके हमारे पीछे आने वाले आदमी अपनी राह तलाश कर सकते हैं। ऐसी जिंदगी हमने जी, बेटे, छोटे सितारे की जिंदगी धन्य है। रात को एक छोटा सितारा चमकता रहता है, रात में जब सभी ओर अंधेरा फैला हुआ है। अब हमको कहाँ चलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए,
तब रात को निकलने वाला सितारा रास्ता बताता है। सितारा,
तू धन्य है। सितारा कहता है कि आइए हम रास्ता बता सकते हैं।
आप देखिए, इधर पूरब है, देखिए इधर पश्चिम है। छोटा सा सितारा हमको रास्ता बताता है और भटकने वाला मुसाफिर, गुमराह होने वाला मुसाफिर रास्ता तलाश कर लेता है और देख लेता है और उसको धन्यवाद देता है। किसको? रात को निकलने वाले तारे को क्या कहता है? फॉर ऑल स्पार्क लिटिल स्टार। ए छोटे तारे, चमको, खूब चमको। थैंक यू फॉर योर टिनी स्पार्क, छोटी सी चिंगारी के लिए धन्यवाद। हाउ आई वंडर हॉट यू आर, छोटे बच्चे गाते रहते हैं।
दूसरे दर्जे की किताबों में लिखा रहता है, ए तारे,
आप धन्य हो, आप जले ठीक, आप बर्बाद हो गए ठीक।
आप छदाम के थे, आप एक मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन आपने वह रोशनी पैदा की जिसकी वजह से हम ठोकर खाने से बचे। संत कौन?
मित्रों,
वह आदमी जिसने अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया जैसे कि छोटे वाले सितारे ने जिया, मिट्टी के छोटे से दीपक ने जिया, उसको शांति मिलने वाली है, संतोष मिलने वाला है। जिसके सफेद कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे नहीं लगे, जिसने गंदा जीवन नहीं जिया, लोगों के सामने घिनौने काम, घिनौने उदाहरण पेश नहीं किए।
बेटे, मैं उसको इज्जतदार आदमी मानता हूँ और उसको मैं संत कहता हूँ। शरीफ आदमी को मैं संत कहता हूँ।
आपने अगर शराफत की जिंदगी जी ली तो समझ लीजिए संत की जिंदगी जी ली। ऐसे जमाने में जहाँ की हर आदमी अपना ईमान खोता चला जा रहा है, एक एक पैसे के लिए लोग ईमान खो रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए और जरा सी बातों के लिए फिसलते हुए चले जा रहे हैं। अगर आदमी इस फिसलन के जमाने में चट्टान की तरह से खड़ा रह गया तो मैं कहता हूँ कि उसको शांति मिलने वाली है,
उसको सुख मिलने वाला है।
आत्मा की भूख पूरी करें।
मित्रों,
आपके दो हिस्सेदार हैं, एक हिस्सेदार आपका शरीर है और दूसरा हिस्सेदार आपकी जीवात्मा है, वह भी आपका पार्टनर है,
उसको भी शेयर मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए।
आपकी भूख तो उन चीजों की है जिसको हम वासना, तृष्णा कहते हैं,
परंतु आत्मा की भूख यह नहीं है। आत्मा की भूख यह है कि आपका चरित्र उच्च स्तरीय बनता रहे।
उच्च स्तरीय चरित्र बनाने के लिए आप अपने जीवन की संपदा में से कोई हिस्सा निकालते हैं कि नहीं? जवाब दीजिए। नहीं साहब, हम तो भजन करते हैं। बेटे, भजन की बात करेगा तो अब की बार मैं गाली दूंगा। बड़ा आया भजन करने वाला, मैं भजन करता हूँ।
भजन लेकर चला है, ले जा भजन को।
भजन की भगवान के यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हमने भगवान के यहाँ खाते में देखा था और यह पूछा था कि आपके यहाँ भजन का कोई अकाउंट है।
उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ भजन का कोई अकाउंट नहीं है, हमारे यहाँ शराफत का अकाउंट है और आपने जिंदगी किस तरीके से जी है इसका अकाउंट है।
अब आप बताइए कि कैसी जिंदगी जीते हैं। हम भजन करते हैं। नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है।
भगवान के यहाँ भजन से कोई ताल्लुक नहीं, सहकारिता के चक्र। मित्रों,
आपको क्या करना पड़ेगा? शराफत की और अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपनी जीवात्मा को खुराक देने के लिए कमर बांध करके खड़ा बनना पड़ेगा। अगर आप नए युग के संदेशवाहक के रूप में चलते हैं तब आप यह काम कर सकते हैं। यह काम आपके स्वयं के काबू का है।
नहीं साहब, हमारा कोई कहना नहीं मानता।
कोई नहीं मानता होगा, लेकिन मैंने मान लिया। आप तो अपना कहना मान सकते हैं।
आपकी अक्ल पर आपका अधिकार तो होना चाहिए,
आपके शरीर पर आपका अधिकार तो होना चाहिए, फिर आप क्यों नहीं मानते?
अपनी जिंदगी को आप शराफत से व्यतीत कीजिए।
बेटे, हमारी जिंदगी में, मनुष्य की जिंदगी में एक और भी चीज है और वह है हमारा शरीर चक्र, समाज चक्र, जल चक्र। यह सभी एक पहिए पर घूम रहा है, सहकारिता के ऊपर, कोऑपरेशन के ऊपर, एक दूसरे की सहायता करने के ऊपर, सेवा करने के ऊपर टिका हुआ है। आप देखते नहीं हैं अपने शरीर को, हाथ कमाता रहता है, मुंह खाता रहता है, पेट हजम करता रहता है, हृदय में खून जाता रहता है और नाड़ियों में खून जमा रहता है। ये सभी एक दूसरे के सहकारिता पर टिके हुए हैं। औरों के लिए जीना।
मित्रों,
अगर हमारे और आपकी तरीके से यह शरीर भी स्वार्थी बन जाए तब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकेगा। यह मनुष्य समाज अगर बादलों को समुद्रों की तरीके से सहयोग नहीं करता रहेगा तो यह मानव समाज मर जाएगा। समुद्र बादलों को पानी देते हैं, बादल जमीन पर बरस जाते हैं। जमीन का पानी नदियों में चला जाता है, नदियां समुद्र में चली जाती हैं। समुद्र से चक्र घूमता रहता है, सकल घूमता रहता है। यदि सकल को घूमने नहीं देना चाहते तो फिर दुनिया में तबाही आएगी और आपके लिए मुसीबतें लाएगी। अगर एक आदमी कुछ भी कमाएगा और स्वयं ही खाता रहेगा, दूसरों की भी कमाई खाता रहेगा और अपनी भी खाता रहेगा। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उसकी समस्याओं के समाधान के लिए हम कोई योगदान नहीं देंगे, उसकी उपेक्षा करते रहेंगे। हमें किसी से क्या काम की नीति अपनाएंगे,
अपने मतलब से मतलब रखेंगे तो बेटे मुसीबत आएगी।
नहीं साहब, यह चीज हमारी है और हम इसे पैसे दे करके लाए हैं।
अच्छा तो कपड़ा कहाँ से लाए हैं, समाज ने बनाकर दिया है ना?
नहीं साहब, पैसे देकर लिया है।
अच्छा तो आप पैसा देकर के सब चीज लाए हैं?
अच्छा, आपने जो माँ खरीदी थी, जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा था और जिसने दूध पिलाया था, कितने पैसे में खरीदा था?
बीबी जो आपके पास है और सारी जिंदगी जो आपकी सेवा करती है, कितने पैसे में खरीद कर लाए?
जिस जमीन पर आप रहते हैं,
यह जमीन कितने पैसे में खरीदी है?
जिस सड़क पर चलते हैं, उस सड़क को कितने पैसे में खरीदी है?
जिस गंगा जी में नहा करके आए हैं, उसे कितने पैसे में खरीदा है?
सूरज जिसकी धूप और रोशनी में आप बैठे हैं, उसे कितने पैसे में खरीदा है?
नहीं महाराज जी, मैं तो पैसे से लाया हूँ।
पैसा देकर खरीदता है, बड़ा आया पैसे वाला।
समाज संस्कृति के प्रति आपका कर्तव्य।
मित्रों क्या हुआ, यह सारे का सारा समाज का अनुदान है, जिसकी वजह से हमको बोलना आता है, सोचना आता है, जिसकी वजह से हम दवा घटाव दारू करते हैं, जिसके ज्ञान में हम रहते हैं और जिसकी वजह से हमारी तरक्की हुई है।
उस समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हाँ तो बेटे के ब्याह के साथ समाज का भी ब्याह करना है।
जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस देश में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, जिस समय में हम पैदा हुए हैं, जिस युग में हम पैदा हुए हैं, उसके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं?
नहीं साहब, उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस हमारी मौज करने की जिम्मेदारी है और औलाद की जिम्मेदारी है।
चलो मान लिया कि आपकी औलाद की भी जिम्मेदारी है और शरीर की भी जिम्मेदारी है, पर वह भी आपकी जिम्मेदारी है जो अभी हमने आपको बताया है।
नहीं साहब, यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है।
तो बेटे मैं एक बात कहता हूँ कि आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको चैन नहीं मिलेगा,
आपकी जीवात्मा भीतर ही भीतर हाहाकार करती रहेगी कि हमने ऐसा घटिया जीवन जिया जिसमें सिवाय स्वार्थों के कोई और दूसरी चीज के लिए गुंजाइश नहीं थी।
बराबर का बंटवारा।
बेटे आपको क्या करना पड़ेगा?
बंटवारा करना पड़ेगा।
आप बंटवारा कर दीजिए और कह दीजिए कि अब तक जो बेइंसाफी चली वह चली, आगे से नहीं चलेगी। आप लोग यहाँ से विदा होंगे, अब आप यह बंटवारा बनाकर जाइए कि आपकी जो कीमती जिंदगी है भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इससे बड़ा उपहार और कोई नहीं है, भगवान के यहाँ इससे बड़ा कोई कोहिनूर हीरा नहीं है जो हमको और आपको मिला हुआ है इंसानी जीवन के रूप में। इसके जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, उसका एक हिस्सा शरीर को दिया कीजिए और एक हिस्सा जीवात्मा के उपभोग को पूरा करने के लिए दिया कीजिए।
दोनों को बराबर बांट दीजिए।
आपके पास जो समय है, जो संपत्ति है, उसे बराबर हिस्से में बांट दीजिए।
नहीं साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है।
बेटे तेरे पास ढेरों सामान है, तेरे पास कई दौलतें हैं और ये इतनी कीमती दौलतें हैं कि भगवान के बेटे को यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम गरीब हैं। भगवान के बेटे को अपने आप को गरीब नहीं कहना चाहिए और अपने बाप की बेइज्जती नहीं करानी चाहिए।
आप दौलतमंद हैं। मित्रों
हमारे पास दौलतें हैं जिसे असली दौलत कह सकते हैं। हमारे पास श्रम है, हमारे पास समय है, हमारे पास अक्ल है, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास ये सभी चीजें हैं और ये हमारी दौलतें हैं।
इन दौलतों को आप बांट दीजिए।
इन्हीं के आधार पर तो हम कमाते हैं, इन्हीं के आधार पर तो हम सिनेमा देखते हैं, इसी के आधार पर तो हमने मकान बना लिया है, इसी के आधार पर तो हम बड़े आदमी हो गए हैं, इसी के आधार पर तो हम पैसा कमाते हैं, अन्य सब कुछ हम इन्हीं के आधार पर कमाते हैं। भगवान की यह असली दौलत है जिसे हम भगवान के यहाँ से लेकर आए हैं। इन्हीं चीजों की कीमत पर हमने जो कुछ भी कमाया है उसका आधार यही है। हमारे पास और कोई दौलत नहीं थी।
भगवान उन दौलतों को छीन ले, समय को छीन ले, श्रम को छीन ले, अक्ल को छीन ले, फिर देखें आप क्या कमा कर लाते हैं।
बेटे यही असली दौलत है जिसका केवल रूप परिवर्तन हो जाता है और हम उसे रुपये के रूप में, अमुक के रूप में ले आते हैं।
आप दौलतमंद हैं।
आप यह मत कहिए कि हमारे पास दौलत नहीं है।
समय को बांटिए। मित्रों
आप इस दौलत का बंटवारा और यह निश्चय कीजिए कि हम अपने श्रम का कितना हिस्सा, समय का कितना हिस्सा इस शरीर के लिए खर्च करेंगे और कितना जीवात्मा के लिए खर्च करेंगे।
आप समय का बंटवारा कीजिए।
आपके पास 24 घंटे समय है, आप इसे बांटिए। इसमें से 12 घंटे भगवान को दीजिए और 12 घंटे शरीर को दीजिए।
नहीं साहब, 12 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं।
अच्छा, बताइए कितना यम देंगे।
महाराज जी,
मैं तो रुपये में 4 आने भगवान जी को दूंगा और 12 आने अपने लिए बचा कर रखूंगा।
अच्छा भाई, चल 4 आने दे दे।
हम भगवान जी से कह देंगे कि यह तो बड़ा वैसा आदमी है, यह तो आपको 4 आने देना चाहता है और 24 घंटे में 12 आने का स्वयं मालिक कहलाना चाहता है।
अच्छा ला भाई, 6 घंटे भगवान को दे दे और 18 घंटे तू खा जा।
नहीं महाराज जी,
यह तो ज्यादा हो गया।
25% तक का तो मैंने ख्याल नहीं किया था, 6 घंटे तो बहुत होते हैं। आप कम करा दीजिए।
हाँ करा दूंगा। तब भगवान को कितना समय देगा? 12.5% देगा।
और 86% तू खा जा। इतना तो देगा कि इतना भी नहीं देगा।
हाँ महाराज जी, इतना तो दे दूंगा। योजनाबद्ध जीवन। अच्छा महाराज जी,
24 घंटे में 3 घंटे दे तो किसके लिए देंगे?
बेटे, उसमें तेरे भजन को मैं शामिल नहीं करूंगा।
भजन तो मैंने कभी शामिल नहीं किया।
भजन को मैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं में मानता हूँ।
शरीर में हम साबुन लगाते हैं, बालों में कंघी करते हैं, कपड़े धोते हैं। बेटे, यह किसी पर आसान नहीं है।
इसे न धोया जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दिमाग को धोने के लिए भजन न करूं तो बेटे दिमाग गंदा हो जाएगा।
भगवान के ऊपर यह कोई आसान नहीं है और यह जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता के लिए हमको अपना चरित्र आदर्श बनाने के लिए, लोगों के सामने अपना नमूना पेश करने के लिए क्या करना चाहिए और समाज को सुखी समुन्नत बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
आपको इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और इसके लिए योजना बनानी चाहिए।
अपने श्रम का उपयोग कैसे करेंगे, समय का उपयोग कैसे करेंगे? आप इस तरीके से बंटवारा बनाकर ले जाएं और यहाँ से जाकर के ईमानदार आदमी की तरीके से जीवन जिए। बिगाड़ा हमने है, ठीक हमें ही करना है।
मित्रों,
नए युग के लिए आपको लोगों के सामने नमूना पेश करना है। इसके लिए ढेरों के ढेरों सामान की जरूरत होगी। इसके लिए ढेरों की ढेरों अक्ल चाहिए, ढेरों की ढेरों समय चाहिए।
बिगाड़ने के लिए तो थोड़ा सा सामान चाहिए, लेकिन बनाने के लिए ढेरों सामान चाहिए। हमने दुनिया को बिगाड़ा है और हम अभी भी बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ने के लिए हमने दुनिया को बिगाड़ा है और हम अभी भी बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ने के लिए हमने सिनेमा खोला है।
सिनेमा की वजह से इसमें हमने कितना पैसा लगाया है, कितनी अक्ल लगाई है, कितने होशियार आदमी इसके लिए हमने इकट्ठे किए हैं, नट इकट्ठे किए हैं, गायन करने वाले इकट्ठे किए हैं, कलाकार इकट्ठे किए हैं। तब इतनी मेहनत करने के बाद हमने अपने बच्चे और बच्चियों को हिप्पी बनना सिखाया है। हमारा बेटा जो हिप्पी हो गया है और बाल रखाए इधर से उधर फिरता रहता है और जिसके बारे में यह पता नहीं चलता कि यह लड़का है या लड़की है। बेटे, यह आफत जो हमने पैदा की है, बड़ी मेहनत से पैदा की है।
मित्रों, हमने सिनेमा बनाया और लड़के एवं लड़कियों के दिमागों में यह खुराफातें पैदा की जिससे उनका शौर्य, उनका साहस, उनका पराक्रम, उनका तेज सब गायब हो गया।
जनानियों की तरीके से, जिनकों की तरीके से यह नहीं मालूम पड़ता कि ये कमभक्त लड़के हैं या लड़कियां हैं। न इनके चेहरे पर कोई तेज है, न सौम्यता।
इनकी वही बनावट, वही श्रृंगार है जो श्रृंगार सारे दिन वेश्याएं करती रहती हैं।
सारे दिन बालों का श्रृंगार करते रहते हैं। बेटे, हमने ऐसी पीढ़ी संसार को दी है,
यह हमारी जिम्मेदारी है।
इसके लिए हमने ढेरों पैसे खर्च किए हैं और करोड़ों की संपत्ति लगाई है, तब हमने अपनी इन पीढ़ियों को खराब किया है। पीढ़ियों को बनाने के लिए बहुत सारी अक्ल चाहिए, बहुत सारा श्रम चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए और बहुत सारा समय चाहिए।
आपको जिंदगी जीकर दिखानी होगी। मित्रों,
यह कहाँ से आएगा? यह जन साधारण के जीवन में से निकल करके आएगा। यह एक आदमी का काम नहीं है, यह बिरला सेठ का काम नहीं है, टाटा का काम नहीं है और यह किसी अमीर आदमी का काम नहीं है। यह जनसाधारण का काम है। हर आदमी को अपनी जिंदगी में से एक हिस्सा देना पड़ेगा, जिसको मैं अंशदान कहता हूँ। इस तरह से हर आदमी को अपना हिस्सा देना पड़ेगा और अपना हक एवं अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि आप मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप नेता हैं, क्योंकि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि आप समाज को दिशा देने के लिए चल रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, लोगों को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करके दिखाना आपका काम है। शिक्षण नहीं बेटे, नमूना पेश करना है।
नहीं साहब, हम व्याख्यान देंगे। बेटे, व्याख्यान से कोई काम नहीं चलेगा।
नहीं साहब, कथा कहेंगे। कथा से बेटे कोई काम नहीं चलेगा। आपका व्याख्यान और आपकी कथा कब सार्थक होगी? जब आप अपनी जिंदगी का नमूना पेश करते हुए क्रिया और विचारों का समन्वय पेश करेंगे, तब आपकी कथा का कोई असर पड़ेगा।
क्रिया व विचार का समन्वय। मित्रों,
अगर आपकी क्रिया और विचारों का समन्वय नहीं है, तो मैं कहता हूं कि आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों के ऊपर वेश्या का असर होता है। वेश्या अपनी जिंदगी में 100 भडुए पैदा कर देती है। उसके विचार और कर्म एक हैं। उसके दिमाग में दुराचार और व्यभिचार की जो वृत्ति है, वही उसके शरीर में भी है। शरीर और मन से वह एक है। एक होने से आदमी में ताकत पैदा होती है, कुबत पैदा होती है। इसी आधार पर वेश्या अपने ढांचे में सैकड़ों आदमियों को ढाल ले जाती है। शराबी अपने ढांचे में ढेरों आदमियों को ढाल लेते हैं। जुआरी अपने ढांचे में ढेरों आदमियों को ढाल लेते हैं। जुआरी अपने ढांचे में ढेरों को ढाल लेते हैं। ये सभी लोग ढाल लेते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं ढाल पाए।
कथा तो हमने बहुत सारी कही, भागवत भी बहुत कही, रामायण की कथा कही, कहीं अमुक कथा कही, लेकिन हमारे कथा की वजह से कोई भी न हनुमान पैदा हो सके, न अर्जुन पैदा हो सके, न तुलसीदास पैदा हो सके, न सूरदास पैदा हो सके, कोई भी पैदा न हो सका।
हमारी कथा कैसी निकम्मी है। न उसमें कोई जान है, न उसमें कोई जीवन है, न उसमें कोई प्रकाश है, न उसमें कोई प्रेरणा है। जीभ की लपल्प, बेकार की लपल्प हम करते रहते हैं। सिद्धांतों की दुहाई, आदर्शों की दुहाई देते रहते हैं। आपके पीछे भी ढेरों चलेंगे।
मित्रों,
पहले यह बताइए कि आपकी जिंदगी कैसी है। भगवान की भक्ति आपके जीवन में कैसी है। अपनी जिंदगी में भगवान की भक्ति उतार कर दिखाए, फिर हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सत्याग्रह का जीवन जी करके दिखाया था, तब लोगों ने कहा कि हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। विनोबा ने सत्याग्रह का जीवन जिया, तब लोगों ने कहा कि हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे। भगवान बुद्ध ने त्यागी का, सन्यासी का जीवन जिया और दिखाया कि भीतर से और बाहर से हम एक हैं। आपके पीछे भी ढेरों के ढेरों आदमी क्यों नहीं चलेंगे।
जरूर चलेंगे, क्योंकि आप उन्हें नया युग, नया प्रकाश देने चले हैं।
इसके लिए बेटे, आपको शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। नया युग लाने के लिए, नए युग के निर्माण के लिए जो समय की जरूरत पड़ेगी, अकल की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, वह हम कहां से लाएंगे। हम चंदा कहां से करेंगे। किसके ऊपर दबाव डालेंगे।
किसको प्रेस करेंगे।
हम प्रयास कहां से करेंगे। कौन देगा और कब तक देगा।
बेटे, यह मांगने से नहीं मिलेगा। स्वेच्छा से जो अनुदान उत्पन्न होंगे, नया युग उसी से आरंभ होगा।
उसी के आधार पर आगे बढ़ना संभव होगा। शुरुआत करें अपने आप से।
मित्रों,
यह काम कौन शुरू करेगा।
यह काम शुरू करेगा मुर्गा। मुर्गा कौन।
मुर्गा आप और कौन।
आप अपने से शुरू कीजिए। गुरुजी,
यह कैसे शुरू करना पड़ेगा, मुझे तो अभ्यास भी नहीं है।
हाँ बेटे, आपको अभ्यास नहीं है,
इसीलिए मैंने कहा था कि आपको वानप्रस्थ का जीवन जीना चाहिए, जिसकी दीक्षा ले करके आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से विदा होकर जा रहे हैं। आप अपने कलेजे में इतनी हिम्मत ले करके जाइए कि शरीर से कहिए कि अब आपको केवल आपका हिस्सा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता। हमारा शेयर होल्डर मरा जा रहा है और उस पार्टनर के हिस्से में जरा सा भी नहीं आ रहा है। आप 24 घंटे खा जाते हैं और हमारी सारी कमाई खा जाते हैं और हमारी सारी अकल खा जाते हैं।
अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब हम अपनी जीवात्मा को भी देंगे, उसके लिए भी 50% का शेयर सुरक्षित रखेंगे।
आप यहाँ से जाने के बाद इस तरह हिम्मत वाला सिद्धांत, हिम्मत वाला आदर्श अगर आप जीवन में ले करके विदा हो, तो मैं समझूंगा कि आपको जिस उद्देश्य के लिए और जिस काम के लिए बुलवाया गया था, उस काम में हमें सफलता मिल गई। और जो आपको करना चाहिए, जो आप करने के लिए इच्छा करते हैं, आकांक्षा करते हैं, उसके बारे में मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि आप यह कार्य जरूर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप से शुरुआत की है। साथियों, जो आदमी अपने आप से शुरुआत कर देता है, उसको सफलता मिल जाती है। जो परायों से सफलता की उम्मीदें करता रहता है कि आप वह कीजिए, आप ज्ञानवान बन जाइए, आप तपस्वी बन जाइए, आप महात्मा बन जाइए।
और हम
जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तब तक बेटे आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, केवल आपका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन जिस दिन आप यह कहेंगे कि आपको करना हो तो करना, नहीं करना हो तो न करना, हम करेंगे। और देखिए, हम करके दिखाते हैं। जिस दिन आप इस तरीके से निश्चय कर लेंगे, मेरा विश्वास है कि आपके अंदर क्षमताएं, आपके अंदर लोगों पर प्रभाव डालने की शक्ति जरूर पैदा हो जाएगी। और आप जहां कहीं भी जाएंगे, फिर आपको बातें करनी आती हो चाहे न आती हो, बोलना आता हो चाहे न आता हो, आपको कथा कहनी आती हो या न आती हो, आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा। आप में से प्रत्येक आदमी को मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आप यहां से विचार करके जाएं।
बदलते युग में जिम्मेदारी। मित्रों,
फिर आप क्या करेंगे? करने के लिए हमारी पुरानी पीढ़ियों के लिए एक काम काफी था।
कौन सा?
धर्मोपदेश।
कथा कहना, भागवत की कथा कहना, सत्यनारायण भगवान की कथा कहना, गंगा जी नहाना, भगवान जी के दर्शन करना। हमारी पहली वाली पीढ़ियां, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनके लिए यही काफी था,
क्योंकि उस जमाने में न चालाकियां थी, न उस जमाने में चोरियां थी, न उस जमाने में बदकारियां थी, न बदमाशियां थी। अब हमारे लिए एक नया काम आ गया है, एक नई आफत आ गई है। जिस जमाने में हम रह रहे हैं, उसमें हमको दो काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? यह काम करने पड़ेंगे कि भगवान ने जब कभी अवतार लिए हैं, ऐसे ही गंदे समय में लिए हैं जिसमें हम और आप पैदा हुए हैं। अवतारों में से प्रत्येक भगवान को दो काम करने पड़े हैं। भगवान का एक भी ऐसा अवतार नहीं हुआ है जिसे दो काम न करने पड़े हों और वह एक ही काम करके चले गए हों। कथा करके चले गए हों, स्नान करा करके चले गए हों, कथा करके चले गए हों, स्नान करा करके चले गए हों, जप करा कर चले गए हों और तीर्थयात्रा करा कर चले गए हों।
बेटे, ऐसा एक भी भगवान हमको दिखाई नहीं पड़ता।
भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उन्होंने दो काम किए हैं। कौन कौन से काम किए हैं?
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
दोनों काम जरूरी। भगवान कौन सा दो काम करता है?
अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना।
धर्म की स्थापना आवश्यक है, कथा कहना आवश्यक है, अखंड कीर्तन और ज्यादा आवश्यक है, गंगा नहाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है, लेकिन एक और काम भी आवश्यक है। वह कौन सा है? आज वांछनीयताएं घर घर में और मन मन में समा गई हैं। इनके विरुद्ध लोहा लेना और संघर्ष करना भी आवश्यक है। अब हमको दो काम करने पड़ेंगे।
हमको लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और धर्म की स्थापना भी करनी पड़ेगी।
हमको जमीन खोदनी भी पड़ेगी ताकि नींव रखी जा सके और हमको चिनाई भी करनी पड़ेगी। बेटे, हमको दो काम करने पड़ेंगे। अपने खेत में गुड़ाई भी करनी पड़ेगी और बुवाई भी करनी पड़ेगी। हम यह दोनों काम करेंगे। एक आंख दुलार की, एक सुधार की।
मित्रों,
हम ऐसे ही समय में पैदा हुए हैं जिसमें दो काम किए बिना हमारी कोई गति नहीं है।
हमको एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की लेकर चलना पड़ेगा।
बच्चों के लिए हम इसी तरह के तरीके काम में लाते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। एक आंख से हम बच्चे को प्यार करते हैं कि तू हमारा प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा लड़का है,
अच्छा हम तुझे मिठाई खिलाएंगे,
लेकिन जब वह यहाँ वहाँ पेशाब कर देता है, घड़ी तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम दूसरी आंख से काम लेते हैं और कहते हैं कि मारे चांटे के तेरे होश ठिकाने लगा देंगे और कान उखाड़ देंगे।
चुपचाप बैठ, नहीं तो तेरे कान उखाड़ दिए जाएंगे।
इस तरह बच्चे को डराते भी हैं। अगर आप बच्चे को डराएंगे नहीं और प्यार ही प्यार करते रहेंगे, तो देख लेना आपके बच्चे का क्या होता है,
बच्चा खराब हो जाएगा।
इस जमाने में हमको दोनों को लेकर चलना है,
एक सुधार का लेकर चलना पड़ेगा और एक प्यार का लेकर चलना पड़ेगा।
हर भगवान ने यही किया।
मित्रों,
हर एक भगवान ने यही किया है।
श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कथा सुनाई बेशक, गोवर्धन पहाड़ उठाया बेशक,
गोपियों के सामने नृत्य किया बेशक,
लेकिन महाभारत भी रचाया,
उसे क्यों भूल जाते हैं? नहीं महाराज जी,
मैं तो रास करूंगा।
बेटे, रास भी कर और महाभारत भी लड़ और पहाड़ भी उठा। नहीं महाराज जी,
मैं तो पहाड़ नहीं उठा सकता, केवल रास नाच करूंगा।
तो बेटे, यह भी बंद कर और नाच भी बंद कर।
नहीं महाराज जी, यह नाच तो मैं जरूर करूंगा और उसे नहीं करूंगा। बेटे, उसे भी कर।
रामचंद्र जी ने दो काम किए। उन्होंने रीछ बंदरों को राक्षसों से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया था। और क्या कर दिया था? उन्होंने शबरी के भक्ति की कथा भी बताई और रामगीता भी बताई थी। और यह भी किया था, ऋषियों के आश्रमों में तत्व ज्ञान की शिक्षा भी पाई थी और शिक्षा दी थी।
वह रामचंद्र जी का काम था। उन्होंने रामराज्य बनाया था, लेकिन दुष्टों से लोहा भी लिया था। निराय गुड़ाए। मित्रों,
हमको भी अपनी जिंदगी में दो काम लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोग ध्यान रखना, दो काम लेकर के आप नहीं चलेंगे तो बड़ी भारी आफत आ जाएगी और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
हमारे जिम्मे माली का काम है।
माली को पौधों में पानी लगाना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरा एक काम और भी करना पड़ता है, उसका नाम है निराई। यह क्या कर रहे हैं?
साहब खर पतवार उखाड़ रहे हैं।
और यह क्या कर रहे हैं? पेड़ की काट छांट कर रहे हैं।
क्यों?
खूबसूरती लाने के लिए इसकी काट छांट जरूरी है। और डंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं?
डंडा लेकर इसलिए हम घूम रहे हैं कि चिड़िया आएंगी और इस बाग को खत्म कर देंगी।